अब हम देखते हैं सूरतुल्लहब। सूरतुल्लहब इसका नाम इस में चूंकि अबी लहब का जिक्र है, उसी से इसका नाम सूरतुल्लहब है। और फिर इसका नाम सूरतुल मसद भी है, क्योंकि इसके अंदर मसद का जिक्र, इसके जो आखिरी वर्ड है वो मसद। और इसी तरह इसको सूरत तब्बत भी कहते हैं और सूरत अबी लहब भी कहते हैं। ये मक्का में नाजिल हुई, बस अबू लहब ज़ाहिर मक्का में ही था। और आप देखें पिछली सूरत में इतात गुजारों का जिक्र आया और उनके लिए बशारत है, और इसमें नाफरमानों का। अब अबू लहब अब्दुल उज्जा इसका असल नाम था, उसका अंजाम बताया गया। और देखते हैं इस सूरत को, ये बेसत के तीसरे साल में उतरी थी, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम लोगों को दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को बुलाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ एक अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, मुझे सच्चा जानो, तो ये पैगाम पहुंचा कर जब आप फारिग हुए तो आपका चचा अबू लहब आया और उसने कहा, ऐ कबीले के लोगों, तुम्हें ये लात और उज्जा से हटाना चाहता है और दूर करना चाहता है और तुम्हें गुमराही की तरफ घसीट रहा है, खबरदार इसकी बात ना सुनना। ये भी आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पे चढ़ के अल्लाह का पैगाम दिया था, वहाँ पहली दफा लोगों को अल्लाह ताला के पैगाम की तरफ बुलाया था, तो इसने कहा था कि नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला आपके हाथ टूट जाए, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए यही बात फरमाई। उसने कहा कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि तुम्हारे लिए हलाक हो, तो क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया? तो अल्लाह ताला ने इसके लिए हलाकत कर दी। यानी ये शुरू दिन से नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में खड़ा हुआ, यानी जिस वक्त आप सफा पहाड़ पे चढ़ के पहली दफा आपने या सबाहा करके लोगों को जमा किया था और पहली दफा पैगाम दिया था, उस दिन ही इसने ये कह दिया था, और आखिरी दिन तक ये ऐसे ही रहा। तो देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत, तब्बत तब से, तब और तबाब का मतलब है दाइमी नुकसान, हमेशा का नुकसान, और टूट गए ये भी इसका तर्जुमा किया गया, टूट गए यद हाथ अबी लहब अबू लहब के, वह तब और वो हलाक हुआ, वो उसके हाथ टूटे और वो हलाक हुआ, यानी उसकी हलाकत की और उसकी तबाही की अल्लाह ताला ने खबर दे दी। और ये कौन था अबू लहब? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, यानी अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें एक तो अब्दुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गरामी थे, जो कि आपकी वफात से पहले, आपकी पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे, तो उनके अलावा 9 उनके और भाई थे, जिनमें से 6 का तो इंतकाल इस्लाम से पहले ही हो गया, और 4 वो थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुवत फरमाया, तो उस वक़्त 4 जिंदा थे। उन 4 में 2 मुसलमान हुए और 2 काफिर फौत हुए। जो 2 मुसलमान हुए हज़रत हमज़ा और हज़रत अब्बास, और जो 2 काफिर ही रहे अबू तालिब और अबू लहब। हज़रत हमज़ा जैसे सैयदुल शुहदा हैं, बहुत ऊंचा मकाम, इसी तरह अबू लहब उलट में है कि वो जहन्नुम में नीचे होगा। तो देखें कि 2 को तो ईमान नसीब हो गया और 2 कुफर के पर ही फौत हुए। अब ये सूरत अबू लहब के बारे में ही क्यों उतरी, जबकि और भी तो दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुखालिफीन थे, क्यों उसी के लिए क्यों उतरी? इसलिए कि देखें आज के दौर में तो आप थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि हाँ, खानदानों में आपस में दुश्मनियां, भाई भाई से नहीं बोल रहा, कयामत की निशानियां, या एक ही खानदान के लोग हैं, एक दूसरे से रूठे पड़े हैं और लड़ाइयां हैं, झगड़े, ये आज तो आप सोच सकते हैं, मगर उस जमाने में ऐसा हरगिज नहीं था। वो आज के जमाने के साथ ना आप कंपेयर करें, आज तो चचा भतीजा आपस में दुश्मनियां, कई जायदादों पे इस पे मुकदमे चल रहे होते हैं, वो तो ठीक है आज है। अब हम उस जमाने को इसलिए नहीं ये इमेजिन कर सकते क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता था कि उस जमाने में अरबों में ये रिवाज था कि अपने कबीले का आदमी, चाहे सच्चा हो चाहे झूठा हो चाहे कोई भी हो, जैसे एक कबीले के शायर ने कहा कि मैं तो ईमान ले आऊंगा अगर मेरा कबीला ईमान ले आता है, और अगर वो नहीं लाते तो मैं भी नहीं लाऊंगा। यानी उनके लिए ऐसे था कि जो कबीला करेगा और जिस तरफ चलेगा ना, उधर ही उन्होंने चलना होता था। कबीले के आदमी की कभी मुखालफत नहीं करते थे, कभी उसको छोड़ते नहीं थे, मगर ये वो पहला बदबख्त था जिसने अपने ही कबीले के आदमी की मुखालफत की, और ऐसी मुखालफत की कि बल्कि ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं पे भी जाते थे लोगों को दावत देने के लिए, तो ये पीछे पीछे हो लेता था। एक वाक्य में आता है कि हजरत रबी बिन इबाद ने अपने इस्लाम लाने के बाद जाहलियत का ये वाक्य बयान किया था कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जुल्मजाज के बाजार में देखा कि आप फरमा रहे हैं लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो फला पाओगे, लोगों का मजमा आपके आसपास लगा हुआ था, मैंने देखा आपके पीछे गोरा चिट्टा चमकते चेहरे वाला, भेंगी आंख वाला, जिसके सर के बड़े बालों की दो मींडियां थी, वो आया और कहने लगा लोगो ये बेदीन है, ये झूठा है, गर्ज आप लोगों के मजमे में जाकर अल्लाह की तौहीद की दावत देते और ये दुश्मन पीछे पीछे ये कहता हुआ चला जा रहा होता। मैंने लोगों से पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये इनका चच्चा अबू लहाब है। आप खुद सोचें, इवन आज भी थोड़ी बहुत जो हमारे अंदर शर्म रह गई है, तो आज भी कोई रिश्तेदार होता है तो अपने रिश्तेदार नहीं करता कि जी हमारी रिश्तेदारी बनती है हम क्या करें, पीछे हो जाते हैं कि मुखालफत के वक्त में या कोई ऐसी चीज ना पसंद आती तो फिर बस रिश्तेदारी का लिहाज कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो ये नामुमकिन था कि कोई अपने रिश्तेदार के खिलाफ बात करे, और ये बात ज्यादा तकलीफ देह होती है ना। जैसे अरबों में एक मुहावरा था, कहा जाता था कि रिश्तेदार की बदसलूकी जो है गैर रिश्तेदार की तलवार के वार से ज्यादा सख्त होती है, तो वो तो सोच ही नहीं सकते थे ना। और यतीम भतीजा हो तो उसका तो ख्याल रखना, माने पे बेटा बना के रखना, ये रिवाज था। और अगर दीन पे नहीं भी आता तो तब भी मुखालिफ ना होता, जैसे अबू तालिब थे, लेकिन इसने वो सारी अरब की पूरी एक जो रिवाज था या तरीका था उनका, उसको भी तोड़ दिया, उसका भी पास नहीं रखा, ना सिर्फ इनकार किया, मुखालफत में इतना बढ़ गया कि आपके पीछे पीछे जाता था और कहता जाता था ये बेदीन है, ये झूठा है, इसकी बात ना मान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया भी था, हमसायगी का भी पास नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात हुई तो ये किस तरह खुशियां मनाता हुआ बाहर निकला, और सिर्फ यही नहीं, आम दिनों में भी कूड़ा करकट फेंक देता था, इसकी बीवी आपके घर के आगे कांटे बिछा देती थी कि सुबह उठेंगे कांटे चुभे इनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे ऊपर से कोई गलाजत फेंक देते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते थे, बस ये फरमा देते कि हमसाइगा का यही हक है, क्या हमसाइगा को मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ऊपर से ये इतना करीबी रिश्ता कि चच्चा है, और उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह से करने वाला था कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाने में आगे आगे था, हत्ता कि शिबे अबी तालिब के अंदर जब बनू हाशिम को महसूर कर दिया गया था तो अबू तालिब तो उनके साथ ही थे, लेकिन ये उनसे कट के, हालांकि बनू हाशिम से उनसे कट के अलग रहा, और इसने ये प्रेफर किया कि मैं अपने खानदान से अपने कबीले से ही दूर हो जाऊं लेकिन मैं इनके साथ नहीं हो सकता। अकबर। और ये जब सूरत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में सुनाई ये सूरत, और इस सूरत में चूंकि बड़ी खूबसूरती के साथ देखें काफ़िए कैसे मिल रहे हैं, वो लोग तो इसको शायरी समझते थे तो वो शायरी से तो उनको बहुत शौक था, तो लोगों ने याद कर ली और फिर जब शायरी को डिस्कस करते थे अपनी महफिलों में, उनके लिए तो जैसे आज लोग ड्रामे देखते हैं फिल्में देखते हैं, उनके लिए शायरी एक चीज़ थी जो एंटरटेनमेंट थी, तो जब उनकी मजलिसें होती तो वो इस शायरी इसको शायरी समझ के डिस्कस करते। और जब ये बात अबू लहब तक पहुंची तो वो आग बगोला हो गया और उसकी बीवी भी इस कदर गुस्से में आई। इसकी बीवी का नाम था, उसकी कुन्नियत उम्मे जमील थी लेकिन नाम अरवा था, अलिफ के साथ, अलिफ रा वाव या अलिफ खड़ी अलिफ। हरब बिन उमैया की बेटी थी और अबू सुफियान की बहन थी, अबू सुफियान बिन हरब भी है ना, और अपने खामिद के कुफर में और इस्लाम दुश्मनी में साथ थी। अब उसको बहुत गुस्सा आया कि ये मेरे बारे में भी इसमें आयतें आई हैं और ऐसे हुआ, तो वो तो निकली और उसने कहा, पत्थर लेके निकली कि आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाऊंगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने आते हुए इसको देखा तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह ये बहुत बुरी औरत है, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई तकलीफ़ दे। आपने फरमाया ये मुझे नहीं देख सकेगी। वो आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे और वो आपको देख ही नहीं सकी और पूछती गई कहाँ है मुजम्मम, कहाँ है मुजम्मम, कहाँ है, और वो आपको देखना पाई। अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए थे और उसको नजर नहीं आ रहे थे। और वो कहने लगी मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथी ने तो मेरी बेइज्जती की है, हजव की है, यानी शेरों में मेरी मुजम्मत की है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नहीं, रब्बुल बैत की कसम उन्होंने तेरी कोई हजव नहीं की, यानी शेरों में तो कुछ भी नहीं कहा। तो वे कहती चली गई, कुरैश जानते हैं कि मैं उनके सरदार की बेटी हूं, उसने कहा मेरी इतनी इंसल्ट कर दी गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बाद में पूछा गया कि इसने आपको देखा नहीं, आपने फरमाया फरिश्ता आड़ बन के खड़ा हो गया था जब तक वो वापस नहीं चली गई। अल्लाह अकबर। और देखिए ये वाकई जब इंसान अल्लाह का कलाम पढ़ता है, अल्लाह ताला आंखों को अंधा कर देता है। इमाम कुर्तुबी जो थे एक दफ़ा उंदलुस में थे तो जा रहे थे एक रास्ते से, तो कुछ मुसलमान आए, उन्होंने कहा कि इमाम साहब कुछ बदमाश लोग आ रहे हैं, ये ना हो कि आपको नुकसान पहुंचाएं तो आप यहाँ से चले जाएं। वो बोले कि अच्छा मुझे नहीं इसकी परवाह, और वो चलते रहे। आगे देखा तो वो बदमाश आ रहे थे, तो उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो बदमाश सामने आए तो वो चीख के कहने लगे शैतान शैतान, और वहां से भाग गए। यानी अल्लाह ताला ने इनके साथ कोई गैबी ऐसी कोई चीज लगा दी कि वो उनको लग गए, उनको ये ऐसे दिख रहा था कोई शैतान है। तो कुरान हिफाजत भी है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, बड़ी हिफाजत है इंसान के लिए। और अल्लाह ताला ने देखे सुबहान अल्लाह, इस औरत की जुबान पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं आने दिया, मुजम्मम मुजम्मम कहती रही। आपने फरमाया मेरा नाम तो मुजम्मम है ही नहीं, मैं तो मुहम्मद हूं। तो यहां पे कहा गया तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत खसारा हलाकत तबाही है उसके लिए, अबू लहब के लिए। यद यद हाथ को भी कहते हैं, अमल को भी कहते हैं, उसका अमल भी सारा गारत हो गया, खत्म हो गया, खसारे में हो गया। और फिर रिपीट हुआ व तब, दोबारा ये लफ्ज आया, ये तकरार किस लिए, एम्फोसिस के लिए। और ये भी कहा गया कि पहला जो है वो उसके हाथों के लिए और दूसरा उसकी पूरी बॉडी के लिए, सब गारत हो गया। और पहला ये भी कहा गया, पहला बद्दुआ के लिए और दूसरा खबर देने के लिए कि वो हो गया बर्बाद। और पहला देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुल नहीं फरमाया, ए नबी आप कह दें, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है तब्बत यदा, और अल्लाह ताला की कोई बात ऐसी नहीं जो के बातें लो, जो ना हक हो, जो झूठ हो, सब बातें सच हैं। तो ये भी बात सच है कि वाकई जिसको अल्लाह ताला फरमा दे कि ये तबाह हो गया, ये बर्बाद हो गया, तो उसके लिए फिर क्या रह जाता है। और ये कुरान की इतनी बड़ी हक्कानियत की एक दलील है, बहुत बड़ी दलील। वो कैसे कि देखें इस सूरत के उतरने के बाद कई साल तक अबू लहब जिंदा रहा, लेकिन उसको कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो इतना मुखालिफ था इस्लाम का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मैं इस कुरान को गलत साबित करने के लिए ही ईमान ले आऊं। मैं इस्लाम का दावा कर लेता हूँ, क्योंकि ये इससे कुरान गलत साबित हो जाएगा। देखो कुरान में तो है कि इसके लिए तबाही है, तो देखो मैं तो इस्लाम ले आया, तो वो होना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको तौफीक ही नहीं दी। देखें कुरान हक है, यानी अभी तो स्टार्ट था इस्लाम का, और वो उसकी मौत तो बदर के बाद हुई है, तो कितना अरसा तक वो जिंदा रहा, लेकिन कुरान हक है ये इसकी दलील है कि उसको फिर तौफीक मिली ही नहीं, वो इसी के अंदर मरा। अल्लाह अकबर। तो यहां पे उसका नाम अब्दुल उज्जा नहीं बताया गया, अबू लहब भी बताया गया। अब्दुल उज्जा जो थे उसका असल नाम था, लेकिन कोई भी उज्जा का अब्द नहीं हो सकता, नाम में ही शिर्क है। अल्लाह ताला ने इस नाम को भी यहां पे नहीं लिया। और लहब असल में शोले को कहते हैं, शोला। तो उसका चेहरा उसके हुस्न की वजह से शोले की तरह भड़कता था, मगर अल्लाह ताला ने इसी लफ्ज को उसके लिए एक सजा बना दिया कि उसके लिए जहन्नुम के शोले होंगे। इसीलिए कुन्नियत का जिक्र आया, उसके नाम अब्दुल लज्जा का जिक्र नहीं आया। ओके लहब वो शोलों का बाप, तो वो शोलों में ही जलेगा। अब वो उसको किसी और वजह से कहते थे, उसकी खूबसूरती की वजह से, इस वजह से, लेकिन वो असल में जहन्नुम की आग में जलने वाला है। तो फ्लेम ऑफ फायर के लिए लहब होता है। उसकी सवारियां भी बड़ी कीमती होती थी, उसके कपड़े भी बहुत आला होते थे, उसकी शादी भी अरवा बिन हरब से हुई, तो वो भी यानी एक बड़े खानदान की औरत थी, तो इस वजह से एक बड़ी सरदारी उसको हासिल थी, बड़ा लोगों में नाम था इसका, और बड़े मालदारों में ये शुमार होता था। कुरैश के बड़े चार मालदारों में इसका शुमार होता था, तो इससे वो बड़ी खुशी महसूस करता था। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, इसका माल भी उसको काम नहीं आएगा और उसकी कमाई भी। बाज ने कहा कि कमाई से मतलब है उसके बच्चे, उसके ना बच्चे काम आएंगे और ना ही उसकी कोई कमाई काम आएगी उसको, यानी उसके देखें कमाई तो क्या उसको काम आनी थी, जिस वक्त के वो मरने लगा तो तब भी उसको उसका पैसा काम ना आया, ना कयामत के दिन काम आएगा। अब उसकी मौत भी इतनी दर्दनाक हुई थी जंगे बदर के बाद, अबू लहाब तकरीबन 7 दिन जिंदा रहा। असल में उम्मे फजल ने खैमे की एक चोब थी जो उसके सर पे मार के उसका सर फाड़ दिया था। असल में इसके पास ना एक लड़का आया अबू लहाब के पास, और उसने आगे कहा कि इत्तला दी ना इसको कि बदर में मुसलमानों को फतह हो गई है, और अक्सर जो बड़े बड़े कुरैश के सरदार हैं वो मारे गए हैं, और 70 को कैदी बना लिया गया। अब ये खबर तो उसके ऊपर बिजली बन के गिरी, इतना गुस्से में आया कि उसने जोरदार थप्पड़ उस लड़के को मार दी। अब उस लड़के की जो मालकिन थी वो देख रही थी, और उन्होंने जाके फिर कहा कि ये जो तुमने किया है हरकत, तुम समझते हो कि मैंने देखा नहीं, उसने भी अबू लहाब को मारा और सर फाड़ दिया। अब उसके बाद फिर वो जख्म आगे से आगे बढ़ता गया, और एक बीमारी होती है जिसमें वो मुब्तला हो गया, जो ताऊन की तरह गिल्टी सी निकलती है, और ये ऐसी बीमारी थी कि सारे जिस्म के ऊपर फैल गई थी। इसी बीमारी में ये मरा, इसके जिस्म से इतनी सख्त बदबू आती थी, और इसको लोगों ने उस जमाने में लोग ऐसी कंटेजियस बीमारियों का चूंकि इलाज नहीं होता था, तो लोग इनसे बहुत बचते थे, इसको तो निकाल दिया उन्होंने कि इसको तो तुम जाके कहीं और रहो, निकल के बाहर जाके अपना इसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया अलग थलग से, और वहीं पे ये बेयारो मददगार मर गया। और जब मर गया तो इसकी लाश भी उठाने वाला उसकी औलाद नहीं थी, कोई नहीं था जो इसके पीछे आता, हत्ता के कुरैश के एक आदमी ने इसके बेटों को गैरत दिलाई कि तुम्हें हया नहीं आती, तुम्हारा बाप जो है उसकी लाश बदबू उसकी फैल रही है, तुम उसको दफन क्यों नहीं कर देते। उन्होंने कहा हम तो डरते हैं अगर हम इसको हाथ लगाएंगे हमें भी ना कहीं बीमारी लग जाए। उसने कहा कि फिर कुछ तो इसका करो, तो उन्होंने फिर अपने गुलामों को कहा कि तुम लोग इसको यानी कि गड़ा खोद के उसमें डाल दो। वो जो गुलाम थे उन्होंने भी हाथ लगाने से परहेज किया, उन्होंने भी लकड़ियों से ले लेके इसकी लाश को घसीट घसीट के और फिर एक दीवार के साथ फेंक दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए। ना कोई इसको गुसल, ना कोई इसको कुछ कुछ भी नहीं। और जहां तक औलाद की बात है तो कसब कमाना औलाद का कैसे किया गया, कसब कमाई को कहते हैं। लेकिन आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी कमाई है, उससे ये लिया गया। तो अबू लहाब के जो बेटे थे उतबा और उतैबा, इन दोनों का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ हुआ हुआ था और अबू लहाब ने इनको हुक्म दिया था कि इनकी बेटियों को तुम तलाक दे दो, तो लिहाजा उन्होंने तलाक दे दी थी। उतैबा जो था, इसने तो आपकी शान में भी गुस्ताखी की और ये वही है जिसको फिर आके शेर ने दबोच लिया था एक सफर में और ये मारा गया था। तो ये उतैबा था। इसके अलावा उतबा और मोतबा था। उतबा और मोतबा जो थे वो फतेह मक्का के दिन इस्लाम ले आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक में दुआ भी की थी और ये दोनों जंगे हुनैन और जंगे ताइफ में भी हाजिर हुए थे। अब आप देख लें कि इसका खसारा कितना बड़ा हो गया कि औलाद भी काम ना आई, एक को तो वैसे ही शेर ने खा लेता, वो तो कुफर पे ही मरा, दूसरे जो इस्लाम पे रहे तो वो भी इसके काम नहीं आएंगे कयामत के दिन। अल्लाह ताला ने कैसे दुश्मनों में, जैसे अबू जहल का बेटा इकरमा, तो इकरमा रज़ील्ला ताला हो इस्लाम ले आए, अबू सुफियान इस्लाम ले आए और आगे मुआविया इस्लाम ले आए। अल्लाह ताला ने जो दुश्मन थे उनकी औलादों में भी अल्लाह ताला ने इस्लाम की उनको तौफीक दे दी और ये भी उनके लिए एक नाकामी थी कि वो सारा वक्त इस्लाम की मुखालफत करते रहे लेकिन उनके बच्चे ही मुसलमान हो गए। वो बुग्ज रखते थे इस दीन से, नफरत करते थे इस दीन से और अल्लाह ताला ने उनके बच्चों के अंदर ऐसे उठा दिए। तो उसको तो ना उसका माल काम आया ना उसकी कमाई काम आई। सयसला नारन दात लहब अन करीब, वो यसला कहते हैं, सुला कहते हैं जलने को, और आग में जलने का और आग में दाखिल होने के लिए ये लफ्ज आता है। तो वो दाखिल होगा आग में, दात लहब शोले वाली। अब ये अबू लहब था तो ये शोले वाली आग में ही दाखिल होगा, सख्त शोलों वाली आग, यानी वो खसारे में रहेगा और हलाक हो जाएगा और अपने माल और औलाद से फायदा नहीं उठा सकेगा और अहले दोजख में से होगा। देखिए अब ये किस वक्त कुरान की तरफ से ये खबर दी जा रही है, बिल्कुल शुरू में, आपको मैं बताया ये शुरू की सूरतों में से है। तो वो इसको कर सकता था कि वो मैं इसको गलत साबित करूं, लेकिन आपने देखा है कुरान हमेशा सच है कि अल्लाह ताला की तरफ से है, उसका कलाम है, इसमें कोई बात गलत नहीं हो सकती। उसको चांस मिले, उसको चांस मिले, लेकिन वो ईमान ना लाया। किस चीज ने उसको इतना मुतकब्बिर बनाया हुआ था, उसके माल नहीं तो बनाया था। इन्नल इंसान यतगा रहा उस्तगना, इंसान सरकश हो ही जाता है जब अपने आप को गनी देखता है कि मुझे नहीं किसी की परवाह। क़यामत के दिन इतना माल के वो इतना मालदार था वो भी ना काम आएगा और ना औलाद काम आएगी कि उसको छुड़ा ले। तो इंसान की ये माल और औलाद, इंसान इनको अल्लाह के रास्ते में लगाए तो उसके लिए सदका जारिया बन सकते हैं, और अगर इंसान इनको इनको अपने लिए सदका जारिया नहीं बनाता तो ये भी उसके काम नहीं आएंगे। और ये इसकी कयामत की फिर सजा है कि भड़कती हुई आग में जाएगा। वह मुरातुहू, और मैंने आपको बताया स्वाद लाम या सली, ये दाखिल होना नहीं कहा गया, वो दाखिल होगा आग में, बल्कि आग में दाखिल होगा शोले वाली। बाज ने कहा कि ये इसके कब्र के अजाब की बात की जा रही है। और इसकी औरत का नाम, जैसे मैंने आपको बताया ये भी एक भेंगी औरत थी, ये भी क्रॉस आइड थी, जैसे ये खुद भी भेंगा था इसकी औरत भी भेंगी थी। और इतने बड़े सरदार की, अबू सुफियान की बहन थी। और फिर इसके बारे में भी आया हम्माल, हम्मा लतल हतब, हमल से, हमल उठाने को कहते ना, हम्मा लता उठाने वाली, अल हतब लकड़ियों का गट्ठा, वो औरत क्या करती थी, उसकी इतनी शदीद नफरत थी कि इस्लाम के साथ कि वो जाती थी मक्का से बाहर और लकड़ियां इकट्ठी करती थी और फिर उनका गट्ठा बनाती थी और अपनी गर्दन पे रख के लेकर आती थी। तो वो जो इतना सख्त दुश्मनी रखती थी, किस लिए लेकर आती थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल दे और वो उनको कांटे चुभें, इसके लिए। फी जी दी है, उसकी गर्दन में होगी हबलून, रस्सी, मिम मसद, मूंज की, यानी मसद का मतलब है खजूर की छाल, खजूर की छाल की बटी हुई रस्सी जो होती है, इसका जो खजूर का जो फाइबर होता है उसकी उसकी ट्विस्टेड जो रस्सी बनाई हुई, तो वो इसकी गर्दन में होगी ये मजबूत रस्सी जिससे वो लकड़ियों का गट्ठा बांधती थी। देखिए, आप लकड़ियों को जमा कर लेते हैं ना तो उसका गट्ठा बन जाता है, फिर उसको आप बांधते हैं किसी चीज से, तो कयामत के दिन उस जैसी रस्सी का फंदा उसके गले में पड़ा होगा। तो इस आयत से मकसद यह है, इसको इसके खामिंद को कैसी अजियत मिलेगी, जिस जहन्नुम की आग में वो ऐसी हालत में होगी कि इसकी पीठ पे जक्कूम की कांटेदार लकड़ियों का गट्ठा होगा और इसकी गर्दन में आग की जंजीरों का फंदा होगा। जिस तरह दोजख की आग में इसकी खाल और उसका गोश्त और उसकी हड्डियां हमेशा रहेंगी, इसी तरह ये रस्सी भी हमेशा उसकी गर्दन में रहेगी। जैसे इसको जलने के बाद भी जिंदा रखा जाएगा ना, इसी तरह वो रस्सी भी बार बार बुनती रहेगी और वो बटी हुई रस्सी इसकी गर्दन में रहेगी। ये नहीं होगा कि रस्सी भी जल जाए, क्योंकि खजूर की छाल की रस्सी तो जल जाएगी। तो ये उसका हाल होगा। और ये जो लकड़ियां थी, ये इसके लिए कयामत के दिन भी अजाब का बाइस, और ज्यादा अजाब का बायस होगी, क्योंकि ये लकड़ियां उठा के लाती थी ना और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। इस तरह आग में इसका खाविंद जल रहा होगा और ये लकड़ियां लाएगी और डालती जाएगी उसके ऊपर, और अपने इसके गले में आग की रस्सी होगी। अल्लाह अकबर। सईद बिन मुसैब फरमाते हैं कि इसके पास एक बड़ा ही खूबसूरत हार था सोने का, कहती थी मैं इसको बेच के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में खर्च करूंगी। तो फरमाया उसके बदले में तेरे लिए आग का तौर क्या, ये जहन्नुम की जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी 70-70 गज की होगी। तो आप ये सोचें कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। ये अबू लहाब ही नहीं, जो भी आपकी मुखालफत ऐसे करेगा कि आपसे दुश्मनी करे और आपको बुरा भला कहे और आपके खिलाफ प्रोपोगंडा करे, उसका यही अंजाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने यहां पर भी अपने नबी का दिफा फरमाया, जो आपके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते थे, अल्लाह ताला ने उनको खुद जवाब दिया। जब अबू लहाब ने आपके मुतल्लिक कहा कि आपका हाथ टूट जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया अबू लहाब के दोनों हाथ टूट जाए, वो खुद हलाक हो गया और उसका बेटा हलाक हो गया और आखरत में जहन्नुम की भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जहन्नुम में लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए होगी और उसके गले में ये रस्सी होगी। अल्लाह अकबर। और इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर कभी भी कोई बात करे तो जिनको अल्लाह ताला ने डिफेंड किया है, तो फिर हमें कितना उनकी डिफेंस के लिए खड़े होना चाहिए। इसके ऊपर नहीं, हमें कोई बुरा कह दे ठीक है, लेकिन अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बात करे तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सुनते हैं इस सूरत की तिलावत।
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.